मत्ती 4:19 में प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम कैसे मनुष्यों की आत्माओं को पकड़ोगे। वह सुसमाचार प्रचार के विषय में बातें कर रहा था। मैं नहीं सोचता कि प्रभु यीशु ने मछली के पकड़ने का उदाहरण अकस्मात रूप में प्रयोग किया, बल्कि मैं सोचता हूँ कि प्रभु ने इस उदाहरण को जानबूझकर इस्तेमाल किया, क्योंकि वह प्रचार की तुलना मछली पकड़ने की विधि से करना चाहता था, क्योंकि प्रथम यह विधि सार्वभौमिक रूप से समझी एवं जानी जाती है। समस्त संसार में हम लोग मछली पकड़ने का शिकार करते हैं। द्वितीय यह कि जिन विधियों का प्रयोग एक कुशल मछुआरा करता है, उसी विधि का प्रयोग एक अच्छे सुसमाचार कार्यक्रम में किया जाता है। इस सत्र में हम सुसमाचार प्रचार की उन 6 विधियों पर चर्चा करना चाहेंगे जो इस बात पर आधारित है कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने 70 को प्रशिक्षित किया जब मत्ती 10 और लुका 10 के अनुसार उन्हें प्रचार हेतु भेजा। पहला सिद्धांत यह है कि अगर आप एक अच्छे मछुआरे की तरह मनुष्य को पकड़ने जा रहे हैं, आपको यह जानना चाहिए कि आप यह शिकार किस लिए कर रहे हैं। आपको यह स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहिए कि आप कहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप एक खास चर्च से यह पूछेंगे कि आप किन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, उनका जवाब होगा, हम प्रत्येक जन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उनका जवाब होना चाहिए, हम प्रत्येक जन तक पहुंचना चाहते हैं। हम मसीह के लिए प्रत्येक जन तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सत्य यह है कि कोई भी चर्च प्रत्येक जन से अनुरोध नहीं कर सकता। एक ही समय में जवान लोगों से, प्रौढ़ लोगों से और बुजुर्ग लोगों से अनुरोध करना बिल्कुल संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार के स्वाद और विभिन्न प्रकार के गीत और विभिन्न प्रकार की शिक्षा और आय के स्तर से अनुरोध करने के लिए प्रत्येक कलीसिया को विशेष यज्ञ होना चाहिए। यही कारण है कि प्रत्येक प्रकार की कलीसियाओं को प्रत्येक तरह के लोगों तक पहुंचने के लिए लिया जाता है, क्योंकि वह कोई एक कलीसिया प्रत्येक प्रकार के लोगों तक नहीं पहुंच सकती। अब मछलियों के प्रकार के अनुसार आप उन मछलियों को पकड़ने जा रहे हैं। जब आप मछली का चारा जो आप इस्तेमाल करते हैं, अंकुशी विधियां जो आप प्रयोग करते हैं, समय, औजार, इन सारी बातों को व्यवस्थित करते हैं, उस मछली का आप शिकार करते हैं, आप जिस प्रकार से प्रवाहित जल में उसका शिकार करते हैं, समुद्री मछली का शिकार करना उससे भिन्न है। मछलियों के शिकार के बाद यीशु मसीह के संदेश को लेकर जब आप जाते हैं तो यही विधियां प्रयोग में लाई जाती है। अब सुसमाचार का निशाना उतना ही पुराना हो गया जितना नया नियम पुराना है। प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचारीय निशाने को ही निशाना बनाया। मत्ती 15:24 के पद में यीशु ने कहा, इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। उसने कहा कि इसराइल के यहूदियों के लिए भेजा गया हूँ। और तब जब पौलुस सेवा में था, पौलुस ने कहा कि सुसमाचार के लिए उसका निशाना पत्रस से भिन्न था। गलतियों 2:7 में पौलुस कहता है कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पत्रस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनना सौंपा गया है। और जब लुका 10 और मत्ती 10 के अनुसार 70 को सुसमाचार के लिए भेजा तो उसने 70 जेलों से कहा, तुम खतना रहितों के बीच और समारियों के शहर में प्रवेश मत करना, बल्कि इसराइल की खोई हुई भेड़ों के बीच जाना। अब हम ध्यान दें कि यीशु ने ऐसा क्यों किया। यीशु मसीह ने उनसे यह क्यों नहीं कहा कि तुम प्रत्येक जन के पास जाना, क्योंकि यीशु जानता था कि वो कहां किन लोगों तक पहुंच सकते हैं। वे यहूदी लोग थे और यहूदियों तक पहुंच सकते थे। वो मात्र इन समूहों को निशाना नहीं बना रहा था, बल्कि प्रभावपूर्ण रूप से चिन्हित कर रहा था। प्रभु यीशु के जो चेले थे एक विशेष लक्ष्य पर केंद्रित थे, न कि मात्र एक लक्ष्य पर। यही कारण है कि हमारी बाइबल में 4 सुसमाचार है। हमारे पास मत्ती का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, लूका और यूहन्ना का सुसमाचार है, और सभी ने लगभग एक समान कहानियों का वर्णन किया है। तब प्रश्न उठता है कि हमारे पास 4 सुसमाचार क्यों है। क्योंकि ये भिन्न भिन्न लक्ष्य समूहों के लिए लिखे गए थे। पहली पुस्तक मत्ती यहूदी लोगों में सुसमाचार प्रचार के लिए लिखी गई, दूसरी मरकुस का समाचार गैर यहूदी अर्थात खतना रहित लोगों के लिए लिखा गया। अब आप अपने चर्च के लिए अपने सुसमाचारीय लक्ष्य का वर्णन किस प्रकार करेंगे? आप ये 4 प्रश्न पूछकर कर सकते हैं। प्रथम, मेरी सेवा का क्षेत्र क्या है? अगर आप एक शहर में रहते हैं तो आप अपने शहर का एक मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं और उन क्षेत्रों पर गोला लगा सकते हैं जहाँ हर कोई पैदल चलने की दूरी पर या वाहन द्वारा जाने की दूरी पर रहते हैं, और तब आप यह समझेंगे यह आपका सुसमाचार मछली पकड़ने का तालाब अर्थात लक्ष्य क्षेत्र है, और वो क्षेत्र है जिसके लिए आप प्रार्थना करने जा रहे हैं या प्रार्थना में उठाए हुए हैं, क्योंकि वो आपका लक्ष्य समूह है। दूसरा प्रश्न जो आप पूछ सकते हैं वह यह है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार के लोग निवास करते हैं। आप यह पता लगाएंगे कि कितने लोग किस आयु समूह में हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले कितने लोग एकाकी जीवन जीने वाले हैं और कितने विवाहित हैं, क्या वे निर्धन लोग हैं, क्या वे काम करने वाले लोग या बेरोजगार हैं, क्या वे शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं। ये सभी प्रश्न आपकी सहायता करेंगे कि आपके लोगों की सुसमाचार पहुंच के लिए कौन सा समूह उपयुक्त है। तीसरा प्रश्न आप पूछना चाहेंगे कि उनके मूल्य, उनकी रुचियां और उनके भयभीत होने का कारण क्या है। अगर आप सरलता के साथ उनके बीच पहुंचना चाहते हैं तो लोगों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखनी होगी। जितना आप अधिक उन्हें समझेंगे उतना अधिक उनकी आवश्यकताओं को जान पाएंगे और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको सहभागी बना सकेंगे। चौथा प्रश्न आप पूछना चाहेंगे कि क्या वे सुसमाचार से अवगत हैं? संसार के कुछ भाग में सुसमाचार के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी अमेरिका में जो लोग कैथोलिक पृष्ठभूमि के हैं, वे थोड़ा बहुत यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और नियम को जानते हैं। लेकिन अगर आप मध्य पूर्व के देशों में सेवा कर रहे हैं, जहां प्रचुर संख्या में इस्लाम को मानने वाले हैं, उन्हें इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं होगी। उसी प्रकार एशिया में बुद्ध धर्म मानने वाले लोगों के साथ है। अगर आपने एक बार अपने महानगर, अपने शहर या अपने गांव के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, तब मैं आपको सलाह दूंगा, तब आप इसका सारांश बना लें और 10 ऐसी चीजों की सूची बना लें जो औसत लोगों के बारे में जानकारी प्रदान कर सके जिन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे चर्च में, जो सैडलबैक चर्च के नाम से जाना जाता है, हमारे पास एक व्यक्ति का विवरण है। हम लोग उसे सैडलबैक सैम कहते हैं। वह व्यक्ति विशिष्ट औसत तरह का एक अविश्वासी है जो कभी चर्च नहीं गया, किंतु हम लोग उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और प्रत्येक समय हम लोग उपासना सभा का कार्यक्रम बनाते हैं, सुसमाचार सभाओं का आयोजन करते हैं या अन्य प्रकार के प्रचारीय कार्य का आयोजन करते हैं। हम लोग सोचते हैं, क्या हम लोग सैडलबैक सैम, जो हमारे क्षेत्र का अविश्वासी है, उसको परिवर्तित कर पाएंगे? दूसरा सिद्धांत यह है कि हमें मछली की तरह सीखना चाहिए। मछली एक हल्की सी आवाज को सुनने की शक्ति रखती है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप शिकार के लिए जा रहे हैं, तो आपको उसके आचरण, उसकी पसंद और उसके चारा डालने के तरीके से आपको अवगत होना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार जिन लोगों के बीच आप पहुंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आचरण, उनके पसंद और उनके रहने सहने के तौर तरीकों का आपको पता होना चाहिए जब मनुष्यों का शिकार आप करने जा रहे हैं। अगर वे अविश्वासी हैं, तो आपको जानना चाहिए कि वे क्या सोचते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो आप पाते हैं कि यीशु मसीह जानता था कि लोग क्या सोच रहे थे। यही कारण है कि प्रभु यीशु का प्रचार कार्य इतना अधिक प्रभाव डालने वाला था। वह जानता था कि मनुष्य के हृदय में क्या था। वह मनुष्य को पढ़ लेता था कि वे क्या पसंद करते हैं। बाइबल कुलुसियों 4:5 में कहती है, अवसर को बहुमोल समझकर बाहर वालों, अविश्वासियों के साथ बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करो। इसका मतलब यह है कि हमें सुनियोजित होना चाहिए। हम जिन लोगों के बीच कार्य कर रहे हैं, हमें तौर तरीकों के अनुसार सोचना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं लोगों पर निर्भर कर रहे होते हैं। अब यहाँ एक समस्या है। आप एक अच्छे मसीह है, किंतु आप एक गैर मसीह की तरह सोचते हैं। सत्य यह है, आप एक अच्छे मसीह हैं और आप एक ईश्वरीय जन से बढ़कर सोचते हैं। इससे कई बार ऐसा होता है कि आप उस प्रकार नहीं सोच पाते जिस प्रकार एक गैर मसीह सोचता है। तो आप अपने क्षेत्र के गैर विश्वासियों के विचारों को कैसे जान पाएंगे? आप किस तरह यह सीख पाएंगे कि उनकी तरह सोचें जिनमें आपको अपनी पहुंच बनानी है? हाँ, यह अति सरल है। आप उनसे बातचीत करें। आप उन अविश्वासियों से बातचीत करके आप यह जान पाएंगे कि उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी पीड़ाएं क्या है, उनकी रुचियां क्या है, उनके मूल्य क्या है, वे अपने जीवन में किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर आप उनसे सही प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो सही उत्तर नहीं पाएंगे और आप अपनी सही योजनाएं नहीं बना पाएंगे। और अगर आपके पास सुसमाचार प्रचार की सही योजना नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा प्रतिफल नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप अब एक काम कर सकते हैं कि आप अपने गांव और शहरों में जाएं और लोगों से बातचीत करें, बाजारों और द्वार द्वार जाएं और उनसे ये प्रश्न करें कि आपकी नितांत आवश्यकता क्या है, आपके भय के मुख्य कारण क्या है, आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो परमेश्वर की बातें करते हैं, और आप उन्हें आत्मिक मुद्दों पर प्रश्न करके उनको आकृष्ट कर लें। आप एक नोटपैड ले लें और समस्त बातों को लिख लें जो आप उनसे सीख सकते हैं। आप अविश्वासियों से जितना सीख सकते हैं सीखे, क्योंकि यह आपको उनके बीच पहुंचने में सहायक होगी। आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि आप किसका शिकार करने जा रहे हैं और सदैव एक मछली की तरह सीखें। मनुष्यों के शिकार का तीसरा सिद्धांत यह है कि आप वहां जाएं जहां मछलियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि अगर एक अच्छे मछुआरे हैं, तो आप उस झील पर नहीं जाएंगे जिस झील में मछलियां है ही नहीं, और न आप झील के सामने जाएंगे जिस समय मछलियां चारा खाने आ नहीं सकती। एक अच्छे मछुआरे जानते हैं कि मछलियों के चारा खाने का समय क्या है। एक बुद्धिमान मछुआरा यह भी जानता है कि अगर मछलियों को भूख नहीं है, तो आपको वहां से चल देना चाहिए, आपको दूसरे छोर पर चला जाना चाहिए। यह एक समान नियम मानव जीवन में भी लागू होता है। समस्त पृथ्वी पर यहाँ के लोग जो फैले हुए हैं, प्रभु यीशु के सुसमाचार को ग्रहण करने की मनोवृत्ति में भिन्नता पाई जाती है। कभी कभी सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को खुला रखते हैं और कभी कभी वे सुनने को तैयार नहीं। ये बातें प्रभु यीशु ने मिट्टी और बीज के वृतांत में हमें बताई है। वो कहता है, एक किसान बीज बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरे मिट्टी न मिलने के कारण वो जल्द उग गए और प्रकाश निकलने पर बीज जल गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने उन्हें बढ़कर दबा दिया और वे मर गए। और तब यीशु कहता है कि क्या तुम जानते हो कि कुछ भूमि उपजाऊ भूमि होती है और वही ग्रहणीय भूमि है। उसने कहा, तुम उस स्थान पर जाओ जहाँ तुम्हें लोग ग्रहण करते हैं। दरअसल मत्ती 10:14 में वो कहता है, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल को झाड़ लो। यहाँ एक विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकलती है। हम उस स्थान को कैसे छोड़ दें जहाँ सुसमाचार के सुने जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो कहता है कि अभी वे सुनने के लिए तैयार नहीं है। यीशु कह रहा है कि तुम वहाँ जाओ जहाँ लोग तुम्हें सुनेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम जब एक सुसमाचारी कार्य कर रहे हैं तो हमें लोगों से प्रतिकूल प्रत्युत्तर न मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ असंख्य लोग हैं जो उद्धार पाने के लिए भूखे हैं। वो कह रहा है कि जब आप फलों की खेती कर रहे हैं तो आप उस समय फल नहीं तोड़ेंगे जबकि फल का रंग हरा है। आप उस समय तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक वह पक न जाए, और जब तक वह पक जाएगा तो आपको उसे तोड़ने के लिए दबाना या झटका देने की आवश्यकता नहीं है। फल आसानी से नीचे आएगा। लोगों को ग्रहण योग्य बनाने के लिए परमेश्वर स्वयं जिम्मेदार है। यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो परमेश्वर है जो लोगों के मनों को सुसमाचार के लिए खोलता है। तब हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उन्हें समाचार में सहभागी बनाएं। आपके किस तरह जानते हैं कि कौन से लोग प्रभु यीशु का समाचार सुनने के लिए बहुत अधिक खुले हैं? जी हाँ, यह एक बात है जो आप हमेशा देख सकते हैं, और जब ये बात एक मनुष्य के जीवन में देखते हैं तब आप जान सकते हैं किस व्यक्ति का हृदय सुसमाचार सुनने के लिए खुला है। और वह क्या बात है? उत्तर है परिवर्तन। हर समय लोग परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। किसी भी समय की तुलना में अब लोगों का हृदय प्रभु यीशु और नकारात्मक भी हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में जब लोग परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और प्रभु यीशु के विषय में सुनने के लिए तैयार है, और अब वे पहले की तुलना में आत्मिक विषयों पर अधिक बातचीत कर रहे हैं। अब यह परिवर्तन एक प्रियजन की मृत्यु हो सकती है, माता पिता की या पति की या पत्नी या बच्चों की मृत्यु हो सकती है, या तलाक की घटना हो सकती है, या बीमारी हो सकती है, या परिवर्तन गुणात्मक हो सकता है, जैसे गांव से शहर में जा रहे हो, बच्चे का जन्म हुआ हो, स्कूल की शिक्षा पूरी हुई हो। कोई भी ऐसी घटना जो मनुष्य के जीवन में घटती है उनमें खुलापन उत्पन्न करती है और वे आत्मिक विषय पर बातचीत करने लगते हैं। अब चौथा सिद्धांत उनकी भाषा में मनुष्यों को पकड़ने का है कि मछली का शिकार के नियम के अनुसार जिए। इससे आप क्या समझते हैं? मेरा मतलब है कि आप अपने निशाने तक पहुंचने के लिए योजनाबद्ध हो। आप आरंभ यहां से करें, लोग कहां स्थित है, न कि वहां जहां आप चाहते हैं। बहुत सारे लोग जिनसे आप बातचीत करेंगे मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, किंतु आप आरंभ वहां से कीजिए वहां वे है। अब यहां मछली के शिकार का एक अन्य सिद्धांत है। आपको ज्ञान हो कि जहां तक मैं जानता हूं, मेरे पिता एक अच्छे मछुआरे थे। जब वह शिकार के लिए जाते थे तो हम साथ ले जाते थे। मैं और मेरा भाई जब हम बच्चे थे अपने पिता के साथ झील, नदी या समुद्र के किनारे जाते थे, और हम ये आशा रखते थे कि हमारे पिता झील से एक एक मछली निकाल लेंगे। लेकिन मैं और मेरे भाई ने कभी भी एक मछली नहीं पकड़ी, किंतु मैं ऐसा करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने पिता की गतिविधियों पर दृष्टि रखने लगा। मैंने ये चीज महसूस की कि मेरे पिता वहीं जाते थे जहां मछलियां पाई जाती थी, न कि वह इंतजार में रहते थे कि मछलियां संग चलकर उनके पास चली आएंगी। वह शिकार के लिए घनी झाड़ियों से होकर गुजरते थे। कई बार पहाड़ियों को उन्हें पार करना पड़ता था, कीचड़ में चलना पड़ता था और गले तक पानी में खड़ा रहना पड़ता था। वे ये काम करते थे जो बहुत ही पीड़ादायक होती थी, इसलिए वो उसी स्थान पर जाते थे जहां मछलियां होती थी। और अक्सर ऐसा होता था जहां वे शिकार के लिए जाते थे, मछलियों का शिकार करना उनके लिए आसान नहीं होता था। दूसरी ओर मैं जब शिकार के लिए जाता था तो मैं अपने लिए सरल रास्ता चुनता था। मैं अपने लिए एक स्थान चुनता था जो छायादार हो, जहां वृक्ष हो, पानी हो, चारा लगाकर छोड़ देता हो, आराम से सब जमीन पर बैठ जाता और निश्चिंत रहता कि मछली फंसे या न फंसे। इसका प्रतिफल यह होता था कि मैं शिकार नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं मछली का शिकार अपने नियम के अनुसार करना चाहता था, न कि मछलियों की आदतों के अनुसार। दूसरी तरफ मेरे पिता जहां भी जाते थे हमेशा आसानी के साथ अपने डोर और मौसी में मछली को फंसा देते। अब आइए इस सिद्धांत को हम अपनी कलीसियाओं में लागू करें। अक्सर यह होता है कि हम आशा रखते हैं कि मछलियां जो अविश्वासी है वह हमारे पास आए। हम अपने स्थान पर, अपने चर्च में, अपने समय के अनुसार बिना निमंत्रण दिए हुए यह चाहते हैं कि वे आए। जी हाँ, आपको निराशा होगी क्योंकि वह आपकी इस इच्छा को पूरी करने नहीं जा रहे हैं। अगर हम अविश्वासियों में पहुंच बनाने जा रहे हैं तो हमें वहां जाना होगा जहां वे रहते हैं। और वे कहां हैं? वे अपने घर में हैं, वे बाजार में हैं, विद्यालयों में हैं। हमें उन लोगों में अवश्य पहुंचना चाहिए जहां वे लोगों के साथ रहते हैं। और हमें अवश्य ही इस काम को करने के लिए तैयार रहना चाहिए, हालांकि वह हमारे लिए पीड़ादायक हो सकता है, किंतु हम उन्हें पीड़ा से बचा सकते हैं। प्रभु यीशु ने यह कहा। यह एक दूसरा सिद्धांत है जो उसने चेलों को दिया। उसने कहा, जब तुम किसी नगर में प्रवेश करो या तुम्हारा स्वागत किया जाए तो जो तुम्हारे सामने रखा जाए उसे खाओ। यह लूका 10:8 में वर्णित है। प्रभु यीशु जब अपने चेलों से कहा कि जाओ और प्रचार करो, तब उसने क्या किया? उसने कहा, तुम्हारे सामने जो रखा जाए उसे धन्यवाद के साथ खाओ। जी हाँ, वह अपने चेलों को भोजन विद्या की शिक्षा नहीं दे रहा था। उस समय वह यहाँ भोजन भी नहीं कर रहे थे, वह एक सिद्धांत दे रहे थे। प्रभु कह रहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम उन वस्तुओं को खाओ जो तुम्हारे सामने परोसा जाए। इसका मतलब यह है कि आप जिन लोगों में पहुंच बनाना चाह रहे हैं, पहले आप उनके तौर तरीकों और संस्कृतियों को अपनाएं। बहुत वर्षों पहले मैं जापान में अल्पावधि के लिए एक मिशनरी के रूप में था और मैंने कहा, वहां मेरे सामने जो कुछ रखा जाएगा मैं उसे खाना सीखूंगा, क्योंकि जापानी भोजन अमरीकी भोजन से बहुत भिन्न होते हैं और दोनों खानों के स्वाद में कोई मेल नहीं है। जापानी खाने का स्वाद मेरे लिए नया था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं, मैंने इस भोजन पदार्थों से उस समय प्रेम करना सीखा और सच यह है कि अब यह मेरा प्रिय भोजन है। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने इस भोजन को प्यार करना था, मेरे सामने जो रखा मैंने उससे खाना सीखा, बल्कि इसलिए कि मैं जापानी लोगों से प्रेम करता था और मैं चाहता था कि वे प्रभु यीशु को जाने, और इसलिए मैंने सभी परिस्थितियों को अपना लिया। अब क्या आप उन काम को करने के लिए तैयार हैं? अब आपकी कलीसिया का कुछ ऐसा करने को तैयार है जो तकलीफ दे, जो परंपरा के अनुसार नहीं है और आपने भविष्य में हमेशा जो किया है उसे भिन्न है, किंतु आप ऐसा करके मसीह के लिए लोग में पहुंच बना सकते हैं। अब कुछ लोगों के लिए यह कल्पना कि लोगों की संस्कृति को अपना और उनकी आवश्यकताओं को जानने का प्रयास करना ऐसा लग सकता है जैसे आप सुसमाचार को जल में डुबा रहे हैं या आप समझौता कर रहे हैं। जी हाँ, यह भय कोई नया नहीं है। दरअसल यह भय नए नियम के चर्च के समय में था। प्रेरितों के काम की पुस्तक के 15 अध्याय में उन्होंने एक सभा बुलाई जिसे यरूशलेम सभा का नाम दिया गया और उन्होंने इस प्रश्न पर बहस किया कि एक आदमी जो मसीह बनने जा रहा है उसे आवश्यक रूप से क्या क्या मानना चाहिए। उन लोगों ने बहस किए, वाद विवाद किए, इसके लिए बहुत प्रार्थना की और इस परिणाम के पहुंचे कि नहीं, अगर प्रभु यीशु के शिष्य बनने जा रहे हैं तो यह कोई आवश्यक नहीं कि आपको यहूदी धर्म की सभी रीति रिवाजों को मानना होगा। और मैं उस कॉन्फ्रेंस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज उसके प्रतिफल में आज मसीहत विश्व के हर भाग में फैल गई है। आप मसीहत एशिया, अफ्रीका और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और समस्त विश्व में देख रहे हैं। वे प्रभु यीशु की आराधना विभिन्न संस्कृति और विभिन्न तरीकों से करते दिखाई पड़ेंगे, किंतु संदेश एक ही है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 में पौलुस के सुसमाचार प्रचार करने के तौर तरीके का पता चलता है। वह यह कहता है, यहूदियों को जीतने के लिए मैं यहूदी बन गया। ठीक इसी तरह जब मैं खतना रहित लोगों के साथ था, मैं खतना रहितों के लिए जैसा बन गया ताकि मैं किसी भी तरह उनमें से कुछ को बचा सकूं। क्या आप सुन रहे हैं कि पौलुस अपनाने को कितना इच्छुक था कि अपनी विधियों व तौर तरीकों को बदल दिया था। उसने अपने संदेश में परिवर्तन किया था कि अपने संदेश को किस प्रकार दें। और इसलिए वह कहता है, जब मैं एक खतना रहित के साथ हूं तो मैं एक खतना रहित बन जाता हूं और उनको पहुंचने के लिए उनके रीति रिवाजों को अपना लेता हूं। आज वह आपसे कहेगा, जब मैं दक्षिणी अमेरिका में हूं तो उनमें पहुंचने के लिए मैं दक्षिणी अमेरिकन बन जाता हूं, और जब मैं चीन में होता हूं तो चीनी लोगों तक पहुंचने के लिए मैं चीनी बन जाऊंगा। पौलुस कहता है, मैं उस मछली के तौर तरीके को अपनाता हूं जिसे मैं पकड़ने जा रहा हूं। क्या आप एक ही तरह के चारे का इस्तेमाल करते हैं? नहीं। क्या आप विभिन्न प्रकार की मछलियों के लिए उसी प्रकार की बंसी का इस्तेमाल करते हैं? और जवाब है नहीं। एक सफल मछुआरा जानता है वह किस प्रकार की मछलियों का शिकार करने जा रहा है और उसी के अनुसार तरीका अपनाता है। वह मछलियों की विधियों के अनुसार मछली पकड़ता है। 1 कुरिन्थियों 9:22 में पौलुस कहता है, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कई एक के उद्धार का मार्ग खुलवाऊं। मैंने अनुभव किया है कि जब मैं शिकार के लिए जाता हूं और जब मैं अपनी नाव नदी या झील में डालता हूं तो मछलियां अपने आप कूदकर मेरे नाव में नहीं आ जाती, और जब मैं जमीन पर से शिकार कर रहा होता हूं वह अपने आप नदी से कूदकर जमीन पर नहीं आ जाती और नहीं कहती कि कृपया मुझे आपकी संस्कृति में जाना होगा। अब मछली की संस्कृति क्या है? पानी है। यह संस्कृति हमारे मनुष्यों की संस्कृति से भिन्न है जो हवा है, किंतु अगर मैं मछली से संपर्क करने जा रहा हूं तो मुझे उनकी संस्कृति का पता होना चाहिए, तो मुझे चारा डालकर ठीक उनकी नाक के सामने कांटा डालना चाहिए। हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वह स्वयं हमारे पास आ जाएंगी, और आप यह भी आशा नहीं कर सकते कि अविश्वासी विश्वासियों की तरह व्यवहार करेंगे जब तक वह अविश्वासी है। इसका तात्पर्य यह है कि हम जिन लोगों में पहुंच बनाने जा रहे हैं उनके प्रति हमें लचीला होना चाहिए। आपको ज्ञात हो कि एक बार मैंने प्रभु यीशु की सेवा के बारे में अध्ययन किया था। मैंने नया नियम का एक एक पद पढ़ा और जानना चाहा कि प्रभु यीशु के प्रचार के कार्य की क्या विधि थी, उसने किस प्रकार मनुष्य का शिकार किया, उसने मनुष्यों को अपने लिए जीतने के लिए किन तकनीक और विधियों का प्रयोग किया। यीशु की कोई एक विधि नहीं थी, उसने अपने लिए जहां जैसी स्थिति पाई उसके अनुसार विधि अपनाई। सत्य यह है कि अगर उसकी कोई एक विधि थी तो वह यह थी कि जहां लोग हैं वहां से आरंभ करें, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आरंभ करें। आप पढ़ेंगे कि कई बार यीशु ने कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। कई बार उसने उनकी आवश्यकताओं, उनकी पीड़ाओं, उनकी रुचियों के अनुसार कार्य किया। अब मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ने यह सब जानबूझकर किया। वह जानता था कि लोगों में पहुंचने का यह अच्छा रास्ता है कि आरंभ वहीं से करो जहां वे हैं, उनकी पीड़ाओं से, उनकी आवश्यकताओं से। इसलिए जब वह किसानों के साथ है तो वह बीज बोने की बात करता है, और जब वह एक महिला के साथ कुएं पर है तो वह जीवन जल की बातें करता है। उसने हमेशा उन चीजों से आरंभ किया जिनमें उनकी रुचियां थी। अब जो मैं बताना चाहता हूँ यह प्रचार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर आप उसके हृदय की चाबी पा लेते हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप मसीह में किसी को भी जीत सकते हैं। और किसी के हृदय की चाबी क्या है? उत्तर है उसकी आवश्यकताएं, उनकी पीड़ाएं, उनकी रुचियां। आप उन्हें दिखाइए कि वे अभी जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनका निदान यीशु मसीह में किस प्रकार है। जब तक कि कोई आवश्यकताओं को नहीं जानता, उसे नहीं पहचानता, कोई भी यीशु मसीह की ओर परिवर्तित नहीं होगा। हर एक मनुष्य का एक द्वीप है और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने आपके उस द्वीप पर एक बंदरगाह बना सकते हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो यह है, इससे पहले कि आप लोगों के साथ सुसमाचार बांटे, पहले आप उनको अपनी ओर आकृष्ट करें। और आकृष्ट करने का रहस्य यह है कि आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, उनके जीवन में उनकी आवश्यकताओं का पता लगाएं और दिखाएं कि किस प्रकार समस्याओं का प्रतिउत्तर यीशु मसीह है। अगर आप ये करेंगे तो पाएंगे कि आपका चर्च बहुत जातियों तक पहुंच पाएगा। अगर आपके चर्च में उनकी आवश्यकताओं को पूरे करने की क्षमता नहीं है तो आपका चर्च कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। किंतु आप अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, आप अधिक से अधिक रुचियों के अनुसार चल सकते हैं, तब आप पाएंगे कि आपका चर्च सत्यता के साथ आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तब आप लोगों को बाहर रखने के लिए आपके द्वार बंद कर लेंगे, क्योंकि समस्त संसार में लोग अपनी जरूरतों को पूरा होने की राह देख रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि अच्छा रिक, क्या उनकी जरूरतें सार्वभौमिक है? क्या आप प्रत्येक देश में, प्रत्येक संस्कृति में आवश्यकता को महसूस करते हैं? और इसका जवाब है हाँ, यह हर जगह है। हर जगह कुछ सार्वभौमिक आवश्यकताएं हैं, प्राथमिक संबंध पर आधारित आवश्यकताएं और भावनात्मक आवश्यकताएं। इससे मेरा तात्पर्य क्या है? भावनात्मक आवश्यकता एक सत्य है कि हर मनुष्य की आवश्यकता है प्यार, हर मनुष्य की आवश्यकता है माफी, और वह अपने जीवन की गणना करे और जीवन में इसका महत्व है। हर एक मनुष्य की आवश्यकता है कि वह सामान्य समस्याओं से बाहर आए, वह अपनी चिंता से मुक्त हो, अपनी गलतियों के एहसास की समस्या, कड़वाहट की समस्या, क्रोध की समस्या, यह हर एक की आवश्यकता है कि वह जाने कि वह अपने परिवार या अपने कार्यस्थल को किस प्रकार निदान करें। और हर एक माता पिता की आवश्यकता है कि वह जाने कि मैं किस तरह अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर और परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। ये सामान्य समस्याएं हैं जो संसार के हर स्थान पर पाई जाती है। ये मसीही और गैर मसीही, हर एक संस्कृति और हर एक राष्ट्र में पाई जाती है। अगर आप इनमें से कुछ सार्वभौमिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप उसमें आसानी अनुभव करेंगे कि किस प्रकार मसीह को और लोगों को अग्रसर किया जा सकता है। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि लोगों को उनकी गलतियों का एहसास करा दें और उन्हें पश्चाताप करने को कहें, किंतु लोग जल्दी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तो आप ऐसे लोगों के साथ क्या करेंगे? फिर आप दूसरी समस्या को आरंभ करते हैं। हो सकता है कि वह अपने जीवन के उद्देश्य की आवश्यकता को महसूस कर रहा हो या अपने जीवन में आराम पाना चाह रहे हो। उनकी क्या आवश्यकता है उनका पता लगाइए और वहां से आरंभ कीजिए और दिखाइए कि उनकी आवश्यकता का समाधान यीशु के पास है। प्रचार का पांचवा सिद्धांत है कि जब आप मछली पकड़ने जाते हैं तो क्या एक से अधिक कांटे का प्रयोग करते हैं? आप जानते हैं कि आपका एक हुक पानी में डाला गया है तो आप सिर्फ एक मछली पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने तीन या चार हुक डाल रखे हैं तो संभव है कि तीन या चार मछली आप पकड़ लेंगे। पौलुस ने यह पहले कुरिन्थी 9:22 में कहा, मैंने सब मनुष्यों के लिए सब कुछ किया, उनमें से कुछ को बचा लूं। वह कह रहा है मैंने हर तरह के कांटों का प्रयोग किया। यह अपने गांव को या अपने शहर को सुसमाचार से ढक देना कहलाता है। आप हर एक समय हर एक मौजूद व्यक्ति तक हर एक तरीके से पहुंचने का प्रयास कीजिए, और अगर आप विभिन्न तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने विश्वास को बांट रहे हैं तो उनमें से एक परीक्षा अवश्य कारगर होगा और भक्तिवासियों के ध्यान को आकृष्ट करेगा। आजकल कलीसियाएं ज्यादातर क्यों एक या दो कांटों का प्रयोग करती है? हो सकता है वह थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रचार करते हो, या एक एक के पास जाकर बताते हो, या कलीसिया को आमंत्रित करते हो। हो सकता है उनके पास वही काम हो जो हमारे पास है। हमारे पास लोगों को यीशु के पास आमंत्रित करने के लिए कोई दूसरा कार्यक्रम, सेवा या रास्ता नहीं है। हम ऐसा क्यों करें? कभी कभी हम गलत प्रश्न करते हैं। हम अक्सर कहते हैं इसका कितना मूल्य चुकाना होगा। कलीसिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लोगों की गिनती महत्वपूर्ण है। पैसा आवश्यक नहीं है। बाइबल कहती है यदि मनुष्य सारा संसार प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ। इसलिए जब मैं पैसा खर्च करता हूँ लोगों को मसीह के पास लाने के लिए, तो ये कभी भी एक खर्चा नहीं बल्कि एक पूंजी लगाना होता है जिसे मैं अज्ञात काल के जीवन के लिए खर्च कर रहा हूँ। यीशु ने कहा तुम्हारे पैसे का सबसे अच्छा प्रयोग यही है कि उसे लोगों को स्वर्ग तक पहुँचाने के लिए खर्च करो। आप स्वर्ग में कैसे धन इकट्ठा करेंगे? पैसा इस्तेमाल करके, यीशु के लिए, लोगों तक पहुंचने के साधन इस्तेमाल करके। बाइबल कहती है आपके पैसे से मित्र अनंत काल के लिए बना लो, उन्हें परमेश्वर के परिवार में ले आओ। इसलिए जब तुम स्वर्ग में होगे वे तुम्हें बधाई देंगे। आप कहते हैं हमारे पास, हमारी कलीसिया के पास पैसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह एक मूल कथा नहीं है वरन बाइबल की कहानी है। मत्ती 70 अध्याय में यीशु ने अपने चेलों को झील पर जाने को और मछली को पकड़ने कहा, और उसने कहा कि मछली के मुंह के अंदर एक सिक्का होगा, मैं चाहता हूं तुम वो सिक्का लेकर कर अदा कर दो। यह बड़ी अजीब कहानी लगती है, लेकिन यीशु ने यह आश्चर्य कर्म आत्मिक सिद्धांत सिखाने के लिए किया। सिद्धांत यह है सिक्का हमेशा मछली के मुंह में रहता है। अगर आपकी कलीसिया का केंद्र लोगों का शिकार करना है, प्रचार ही आपकी कलीसिया की प्राथमिकता है, तो परमेश्वर आपके सारे कर्ज चुका देगा। हडसन टेलर ने कहा है परमेश्वर के कार्य परमेश्वर के तरीके से होते हैं जिससे परमेश्वर के सहयोग की कभी कमी नहीं रहती। अब आखिरी चौथा सिद्धांत है लोगों के शिकार करने की और किस तरह से आगे बढ़े, कि शिकार किस तरह से कीजिए कि आप अच्छी तरह से उनको पकड़ सके। अच्छी प्रकार की मछली का शिकार करें जिससे आप अच्छी मछली पकड़ सके। उन लोगों के पास बाद में जाएं जिनके पास आप पहुंचना ज्यादा पसंद करते हैं। एक बार फिर से ये मूल परियोजना हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं और नए नियम में। आंद्रियास गया और अपने भाई पत्रस को मसीह के पास वापस ले आया। मत्ती गया और कर वसूल करने वालों के लिए एक सभा आयोजित की। क्यों? क्योंकि मत्ती एक कर वसूलने वाला था। स्त्री जो कुएं पर थी अपने गांव गई और उन सबको जिन्हें वो गांव में जानती थी अपने मित्रों को वापस ले आई। सिद्धांत यह है जिन लोगों को आप अच्छी तरह जानते हैं उन तक अच्छी तरह पहुंच सकते हैं, और जो आपको पसंद करते हैं उन तक आप अच्छी तरह पहुंच सकते हैं। अब सत्य यह है आपकी कलीसिया एक निश्चित प्रकार के लोगों तक पहुंचने में सबसे अधिक उपयुक्त है। दूसरों तक पहुंचने की अपेक्षा कुछ प्रकार के लोगों तक पहुंचना आपकी कलीसिया के लिए ज्यादा आसान है। इसलिए हमें सब प्रकार की कलीसियाओं की आवश्यकता है। आप ये कैसे निर्धारित करेंगे कि आपकी कलीसिया किस प्रकार के लोगों तक अच्छी तरह पहुंच सकती है? इसके लिए आपको दो बातें देखनी है। पहले आपको पूछना है कि किस तरह के लोगों पहले से ही कलीसिया में उपस्थित है, क्योंकि जिस तरह के लोग पहले से ही आपकी कलीसिया में विद्यमान है उसी तरह के लोगों तक लगातार आप पहुंचते रहेंगे। संक्षेप में, अगर आपकी कलीसिया जवान लोगों से भरी है तो निश्चित रूप से आप और भी अधिक जवान लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर अपनी कलीसिया बूढ़े और अधेड़ लोगों से भरी है आप और अधिक बुजुर्ग लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर आपकी कलीसिया जवान परिवार एवं बच्चों से भरी है तो आप निश्चित रूप से दूसरे जवान परिवार व बच्चों तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके यहाँ एक एक व्यक्ति ज्यादा है तो आप बहुत से अकेले व्यक्तियों तक पहुंच सकते हैं। आप देखते हैं जब कोई अविश्वासी पहली बार आपकी कलीसिया में आता है तो उसके मस्तिष्क में जो पहला प्रश्न उठता है वो बाइबल के बारे में या प्रभु यीशु के बारे में नहीं होता, वरन ये होता है कि क्या आपकी कलीसिया में उसके समान कोई और भी है, और वे चारों ओर देखने लगते हैं। अगर मैं एक सिपाही होता मैं चारों तरफ देखता और कहता क्या यहाँ दूसरे सिपाही है। यदि मैं एक अधेड़ व्यक्ति होता मैं चारों ओर देखता और कहता क्या इस कलीसिया में दूसरे अधेड़ व्यक्ति है। अगर मैं एक नौजवान होता मैं अंदर आता और कहता क्या यहाँ दूसरे नौजवान है। बच्चों वाले लोग चारों तरफ देखते और यही कहते, क्या दूसरे लोग भी हैं जो बच्चों के साथ हैं? अगर वे अपनी तरह दूसरे लोगों को पाते हैं तो वे कलीसिया में रहना पसंद करते हैं। अगर वे अपनी तरफ के लोगों को नहीं पाते तो हो सकता है कि वो रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लोग अपनी तरह के लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न आप पूछ सकते हैं, मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? एक कलीसिया का नेता होने के नाते मैं केवल यह कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपको अद्भुत रूप से तैयार किया है, एक निश्चित अद्भुत पृष्ठभूमि के साथ, एक निश्चित प्रकार के लोगों के लिए। कुछ खास लोग हैं जिनके पास आप पहुंच सकते हैं और कोई नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर ने आपको तैयार किया है और अपने राज्य में लाया है ताकि आप उन लोगों के साथ सुसमाचार बांट सके। परमेश्वर हरेक के लिए आपको जिम्मेवार नहीं ठहराएगा, परंतु परमेश्वर आपको उनके लिए जिम्मेवार ठहराएगा जिनके पास आप अच्छी तरह से पहुंच सकते हैं। अब आप क्या करेंगे यदि आपकी कलीसिया मेल न खाए? गांव वासियों के साथ, समुदाय और शहर के लोगों के साथ जो आपकी कलीसिया के चारों तरफ रहते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है आपकी कलीसिया अधेड़ व्यक्तियों से भरी हो और आपकी कलीसिया के चारों ओर जवान लोग हो और वे कलीसिया में आना न चाहते हो। अब आप क्या करेंगे? उत्तर हमेशा यही होगा, नई कलीसिया शुरू करो। नई कलीसिया शुरू करना परमेश्वर की महान आज्ञा को पूरी करने की कुंजी है। मैं विश्वास करता हूँ हर एक कलीसिया को दूसरी कलीसियाएं भी शुरू करनी चाहिए। सैडलबैक चर्च, जिसका मैं पादरी हूँ, उसने पिछले 18 सालों में 30 दूसरी कलीसियाएं भी शुरू की है। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी कलीसिया हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए हमने दूसरी नई कलीसियाएं शुरू की और अलग अलग प्रकार के लोगों, भाषाओं और आयु वर्ग और विभिन्न जीवन शैली संपादन करने वाले समूहों तक पहुंच रहे हैं, जिससे हर एक व्यक्ति मसीह के पास आए। और मैं अत्यधिक जोर देकर कहूंगा कि आप प्रार्थना करना शुरू कर दें कि आपकी कलीसिया दूसरी कलीसिया या बहुत सी कलीसियाओं को स्थापित कर सके। क्या आप मनुष्यों की शारीरिक पक्वता के चिन्हों में से कोई एक जानते हैं? दोबारा उत्पन्न करने की योग्यता। जब आप बच्चा रखने की योग्यता रखते हैं और बच्चा उत्पन्न करते हैं, तब आप एक परिपक्व व्यक्ति कहे जाते हैं। उसी तरह एक परिपक्व कलीसिया का एक चिन्ह है कि वह घातक रखना शुरू कर देती है, वह दूसरी कलीसियाएं उत्पन्न करने लगती है। जैसा कि अब मैं इस चरण को समाप्त करने जा रहा हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर से कहें कि वह आपको प्रयोग करे, न केवल यीशु के लिए दूसरों तक पहुंचने में, बल्कि परमेश्वर आपकी कलीसिया को दूसरी नई कलीसियाएं शुरू करने में प्रयोग करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवादित हूं कि आपका वचन बेहद स्पष्ट है, पर मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मनुष्यों को स्वीकार करने के वो सिद्धांत दिए हैं जिन्हें हम अपने जीवनों में लागू कर सकते हैं। हमारी सहायता कीजिए ताकि जिस तरह प्रभु यीशु लोगों की परवाह करते वे हम भी करें। हमारी सहायता कीजिए कि हम समझे कि प्रभु यीशु हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं, ताकि हर व्यक्ति परमेश्वर को जाने और सब उसके पास पश्चाताप के लिए आए। और इसलिए हमारी सहायता कीजिए कि हम संसार की सबसे बड़ी खबर अपने चारों ओर के संसार के साथ बांट सके। यीशु के नाम में आमीन।